नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। एप्पल का सबसे नया फोन आईफोन 14 अब भारत में बनाया जाएगा। कंपनी चीन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार में विनिर्माण के लिए बड़ा दाव लगा रही है। एप्पल ने भारत में 2017 में आईफोन SE के साथ विनिर्माण शुरू किया था। आज कंपनी देश में अपने कुछ सबसे उन्नत आईफोन बनाती है, जिनमें आईफोन SE, आईफोन 12, आईफोन 13 और अब आईफोन 14 शामिल हैं। एप्पल ने इस महीने की शुरुआत में अपनी नई आईफोन श्रृंखला आईफोन 14 मॉडल का अनावरण किया था। इसकी विशेषताओं में एक बेहतर कैमरा, शक्तिशाली सेंसर और उपग्रह संदेश सुविधा शामिल हैं। इसके चार मॉडल हैं, आईफोन 14 प्लस, प्रो और प्रो मैक्स। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में भारत में बना आईफोन 14 स्थानीय ग्राहकों तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। भारत में बने फोन भारतीय बाजार और निर्यात दोनों के लिए होंगे। आईफोन 14 को चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित फॉक्सकॉन के श्री पेरम्बदूर संयंत्र से निर्यात किया जाएगा। इस बारे में संपर्क करने पर एप्पल ने PTI भाषा को दिए एक बयान में कहा, हम भारत में आईफोन 14 के निर्माण को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने आगे कहा, नया आईफोन 14 नई तकनीकों और महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर की पेशकश करता है। आईफोन 14 को 7 सितंबर 2022 को पेश किया गया था और 16 सितंबर 2022 से ये फोन अन्य बाजारों के साथ ही भारत में ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। हर्ष इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर सोमवार को 330 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले 36% से अधिक के प्रीमियम के साथ सूचीबद्ध हुए। कंपनी के शेयर BSE पर निर्गम मूल्य के मुकाबले 34.54% की उछाल दर्शाते हुए 444 रुपये पर सूचीबद्ध हुए। बाद में शेयर 46.87% बढ़कर 484.70 रुपये पर पहुँच गया। NSE पर शेयर 36.36% की तेजी के साथ 450 रुपये पर खुला। हर्ष इंजीनियर्स इंटरनेशनल के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को इस महीने की शुरुआत में 74.70 गुना अभिदान मिला था। करीब 755 करोड़ रुपए की पेशकश के तहत शेयरों की कीमत 314 से 330 रुपये प्रति शेयर थी। उत्तर कोरिया और चीन ने 5 महीने बाद सोमवार को मालगाड़ी सेवा बहाल की। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था कोविड महामारी और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के चलते प्रभावित हुई है और पुनरुद्धार के लिए संघर्ष कर रही है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने पिछले महीने कोविड महामारी से उबरने का दावा करते हुए प्रतिबंधों में ढील देने का आदेश जारी किया था। उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को संभालने वाले दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय ने कहा कि उसने सोमवार को फिर से शुरू हुई उत्तर कोरिया चीन माल रेलवे सेवा का आकलन किया। हालांकि न तो बीजिंग और न ही प्योंगयांग ने इसकी पुष्टि की है। एकीकरण मंत्रालय के प्रवक्ता चो जोंग हून ने कहा कि रेलगाड़ी सेवा कितने समय तक चलेगी और किस माल की आवाजाही पहले होगी, ये देखा जाना बाकी है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% रह सकती है। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मुद्रा स्फीति 2022 के अंत तक 6% के ऊपर रह सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा स्फीति की अधिकतम सीमा 6% तय की है। हालांकि महंगाई लगातार इस स्तर से ऊपर बनी हुई है। S&P ने एशिया प्रांत के लिए अपने आर्थिक पूर्वानुमानों में कहा कि अगले साल भारत की वृद्धि को घरेलू मांग में सुधार का समर्थन मिलेगा। बयान में कहा गया, हमने भारत के वृद्धि पूर्वानुमान को वित्त वर्ष 2022 से 2023 के लिए 7.3% और अगले वित्त वर्ष के लिए 6.5% पर बनाए रखा है। हालांकि इसमें कमी का जोखिम बना हुआ है। उच्च मुद्रा स्फीति और बढ़ती नीतिगत ब्याज दरों के बीच अन्य एजेंसियों ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि अनुमान में कटौती की है। इस महीने की शुरुआत में फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि अनुमान को घटाकर 7% कर दिया था, जो इससे पहले 7.8% था। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भी अपने अनुमान को 7% से घटाकर 6.9% कर दिया था। एशियाई विकास बैंक ने अपने पूर्वानुमान को 7.5% से घटाकर 7% कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ेगी। रियल एस्टेट कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स को उम्मीद है कि उसे चालू वित्त वर्ष के दौरान मुंबई में दो आवासीय सोसाइटी के पुनर्विकास संबंधी परियोजनाएं मिल सकती हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद सुब्रमण्यम ने ये जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी को विस्तार योजनाओं के तहत डेटा सेंटर विकसित करने की भी उम्मीद है। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड महिंद्रा समूह की रियल एस्टेट शाखा है। कंपनी अपने मौजूदा बड़े एकीकृत औद्योगिक पार्कों में औद्योगिक और वेयरहाउसिंग क्षेत्र विकसित करने की तैयारी भी कर रही है। इसके अलावा वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास बनाने पर भी विचार कर सकती है। सुब्रमण्यम ने पीटीआई भाषा को बताया कि कंपनी अपने आवास और औद्योगिक कार्यक्षेत्र का विस्तार करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुंबई में सोसाइटी के पुनर्विकास के रूप में बहुत बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कई सोसाइटी फिर से पुनर्विकास के लिए आ रही हैं, उनमें से कई के अतीत में स्थानीय डेवलपर्स के साथ अनुभव अच्छे नहीं रहे जिन्होंने उनके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन विभिन्न वित्तीय कारणों से परियोजना को आगे नहीं बढ़ा पाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिंद्रा ब्रांड सोसाइटी के सदस्यों के बीच तत्काल विश्वास पैदा करता है, जो एक बहुत बड़ा लाभ है। सुब्रमण्यम ने कहा, हमने फरवरी या मार्च में घोषणा की थी कि हम सोसाइटी का पुनर्विकास करना चाहते हैं, तब से हमारे पास कई लोग पूछताछ के लिए आए हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।